राजा मन में सोचने लगा, आपकी कथा में महाराज हमने तो दुर्योधन को अपना गुरु मनाया। बोले दुर्योधन से क्या सीखा? बोले योगेश्वर कृष्ण गए दुर्योधन के पास कि भाई पांच पांडवों को पांच गांव दे दो, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अब मुझे भी पता है कथा के बाद अब दक्षिणा लेने आप आए हो, हे ब्राह्मण बिना युद्ध के एक रुपया भी नहीं दूंगा तुमको, पहले युद्ध करो दक्षिणा लेके चले जाओ। तो कई बार कथाओं का अलग अलग मन हमारा मत निकल आता है अंदर से, कथा कही कुछ और गई थी और निकल कुछ और आती है, या निकली भी सही हो लेकिन समझने वाला उसको किसी और रूप में धारण कर रहा है। एक बार हम कथा कर रहे थे यहाँ होटल के पास में, एक जगह है, गांव का नाम तो पता नहीं कौन सा गांव था, क्या नाम था उसका, वो होटल के पास में कथा हुई थी, गौड़ होता, गौड़ होता। अब वो भी संत थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा करनी, मैं ठीक है महाराज जी करेंगे कथा। वहां 7 साल से कोई व्यास जी कथा कर रहे थे, हमारी कथा कराई तो खूब विशाल कथा कराई उन्होंने। तो कथा चल रही थी तो कभी कभी किसी किसी प्रसंग में मन करता है इसको विस्तार से सुनाए, तो वहां हमने वृत्रासुर की कथा को विस्तार से सुनाया। अब होटल एक प्रकार से भली हरियाणा में हो ब्रज में ही आता है, मैं जैसे ही कथा करके नीचे उतरा तो एक एक बाबा ने मुझको पकड़ लिया, अरे व्यास यहाँ पे आ, गांव में तो ऐसे ही बोले। मैं जय हो महाराज जी, कौन की कथा सुना रहे हो आज कथा में? मैंने की कौन की कहा, वृत्रासुर की कथा सुना रहे, हमने तो कभी सुनी ना वृत्रासुर की कथा। मैंने की तो आपने नहीं सुनी इसीलिए तो सुनाई, आप तो आनंद मनाओ सुना ना, 7 साल से हम कथा सुन रहे हैं, व्यास ने तो कभी वृत्रासुर को नाम भी ना लियो और तुम भागवत की पोथी रख के ना जाने कौन कौन की कथा सुना रहे हो, तुम्हारी वजह से भागवत को ह्रास है। और उन्होंने मुझको इतना सुना दिया, दूसरे दिन भागवत में मैंने उनको वृत्रासुर स्तुति दिखाई। मैंने की देखो ये है कि नहीं यहाँ पर, तो अपने बालक को बुला के बोले बाप पुराने व्यास को नंबर खोज के दे, 7 साल से हमें मूर्ख बना रहे हो, यहाँ पे वृत्रासुर की कथा ही ना सुनाई कभी, और ये व्यास जी हमको सुना गए। तो श्रोताओं का कभी कभी क्या होता है, वे कथाओं में वक्ता को जज करने के लिए बैठते हैं, देखें सही कैसी कथा सुनावे। हम कई जगह कथा करने जाते हैं तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ठाकुर जी को छोरा ठाकुर जी जैसी कथा होगी, लेकिन हमारे पिताजी ने व्यासपीठ तब दी थी, बोले कि दुनिया में 99% वक्ता मेरी नकल करते हैं, हमारे पिताजी कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा भी मेरी नकल करेगा उससे मुझको प्रसन्नता नहीं होगी, तू अपनी कथा बिल्कुल नहीं तैयार कर। इसलिए हम पिताजी की ना तो कोई बात कथा में कहें ना पिताजी जैसे बोलें, बिल्कुल अलग है। श्रोताओं को चाहिए कथा में ज्ञान वैराग्य भक्ति की स्थापना हृदय में हो, इस भाव से बैठें, हम आपको वचन दे रहे हैं ये भागवत है। यहाँ पर मंच पर बैठने वाला व्यक्ति अबोध भी होगा ना, वो केवल अपने पेट भरने के लिए कथा कर रहा है, ऐसा वक्ता भी यदि कथा सुनाएगा तो उसकी कथा भी आपको प्रेरणा प्रदान करेगी। बने हम पात्र बन करके, बैठे हम पात्र बन के। तो भक्ति तो सबके हृदय में है लेकिन ज्ञान वैराग्य इन दोनों की कमी है। अब सावधानी से सुनिए, ज्ञान किसको कहते हैं और वैराग्य किसको कहते हैं। सबसे पहली बात ज्ञान, शास्त्र आज्ञा है सावधानी से सुनिएगा, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, शास्त्र कहता है उस व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती जिसके भीतर ज्ञान नहीं है। आप लोग उस व्यक्ति को अपने यहां कभी काम पर नहीं रखोगे जिसको काम करना आता ही नहीं। अब आप खेत पे किसी को रख दो, बोले भैया सुन यहाँ पे तू ध्यान रखियो कोई बाहर को जीव जंतु आके खेत को खावे नहीं। अब वो नदम आप जैसे ही गए खेत से सुई पेड़ के नीचे मेड़ पे अपनो सिर लगा के सो गए, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। ऐसे व्यक्ति को दोबारा खेत पे रखोगे? कभी नहीं रखोगे। ऐसी भगवान के वैकुंठ में, स्वर्ग में कोई भी जा सकता है लेकिन वैकुंठ में भगवान भक्त और ज्ञानी ये दोनों हों तभी भगवत प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं ज्ञान नहीं होगा तो मैं वैकुंठ नहीं बुलाऊंगा, तुम सब उजाड़ दोगे यहां पर। ज्ञान का होना अति आवश्यक। अब देखो बलि प्रथा, हमारे वेद में लिखा है कि मंदिर में जाकर के अपने हृदय के बकरे की बलि चढ़ा दो। बकरे का मतलब क्या है? बकरा सदैव बोलता है मैं का मतलब अहंकार, उसके अंदर अभिमान है। शास्त्र आज्ञा करते हैं मंदिर में जाने से पहले कितना भी मैं करो, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, सब कुछ मेरा, लेकिन मंदिर में जाने के बाद में मेरा तेरे में परिणत होना चाहिए। तेरा सब कुछ, तेरा ही मैं, तेरी ही मकान, तेरा ही सब। इसलिए क्या करो, बोले मंदिर में जाके ये मैं जो करता है ना, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ बकरा, उसकी जाके बलि चढ़ा दो। भले आदमी ने बेचारे निर्दोष जीव की बलि चढ़ा दी मंदिर में जाके। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं मुर्गे के अंदर एक गुण होता है, उसके दाने को कोई भी खाने का प्रयास करेगा तो उसको तुरंत मारने का प्रयास करता है, दूसरों के दानों को भी छीन करके खा जाता है, दरिद्री होता है मुर्गा। मंदिर में जाओ, अपने हृदय के दरिद्र मुर्गे की बलि चढ़ा दो। आदमी मुर्गे को ही चढ़ा देता, अपने हृदय की नहीं चढ़ाता। भैंस की बलि चढ़ाओ, बोले क्यों? बोले भैंस के कितना भी उसको ज्ञान दे दो, लेकिन भैंस करेगी वही जो वो चाहती है, इसलिए भैंस की बलि चढ़ाओ। अपने हृदय के उस अभिमान की, उस अज्ञान की बलि चढ़ाओ जो कभी शास्त्र सम्मत बातें नहीं करता, लेकिन आदमी उसकी बलि नहीं चढ़ाता है। अज्ञान का रूप माना गया भैंस को। हम लोग इन निर्दोष जीवों की बलि चढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति तो है लेकिन ज्ञान युक्त भक्ति नहीं है। हमको पता नहीं है बलि किसकी चढ़ानी है। ज्ञान के साथ भक्ति मुक्ति प्रदायिका हो जाती है, और ज्ञान के बिना भक्ति स्वर्ग प्रदान करती है। इसलिए ज्ञान होना अति आवश्यक। अब दूसरी बात, वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? हिमालय पे चले गए, लंबी जटाएं धर ली और महाराज त्रिपुंड लगा करके और बर्फ में बैठ करके भजन करना, ये वैराग्य है। इसको भी श्रेष्ठ वैराग्य नहीं। अभी मेरी यहाँ कथा 11 को पूरी होगी और 11 को ही रात्रि में निकल जाऊंगा मैं हरिद्वार, और वहां से फिर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ वहां पर बड़े बड़े तपस्वी गुफाओं में रहते हैं, एकाध के दर्शन मैंने भी किए। लेकिन बंधुओं बुरा ना माने, शास्त्र के अनुसार गुफा में बैठ करके भजन करना भी श्रेष्ठ वैराग्य नहीं माना गया है। दो बातें हैं, एक तो हमारे पूज्य पिताजी इस बात को कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं। अब ब्रह्मचारी होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये, तुमको किसी ने पसंद ही नहीं किया, कोई ने अपनी छोरी तुमको दई नहीं, कोई तुम्हारे साथ राजी है नहीं ब्याह करने को, तो फिर ब्रह्मचारी हो ही जाओगे, है कि नहीं है? और एक ब्रह्मचरित्व तो किसको कहा गया है? बोले असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में भी अपने पर वशीकरण करके बैठा है, ये ब्रह्मचार। ब्रह्मचार्य किसको श्रेष्ठ मानोगे? एक वो जो साधन की प्राप्ति ना मिलने पर ब्रह्मचर्य को पालन करता है, और एक वो साधन सारे सामने बैठे हैं लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी बन जाए। श्रेष्ठ वो है जो साधनों के रहते हुए भी उनमें आसक्ति भाव ना रखे। मैं रसगुल्ला नहीं खाता, अब खाने को मिले ही नहीं तो फिर कहोगे खाता नहीं मैं। लेकिन एक है कि 56 भोग सामने रखे हैं लेकिन फिर भी अपनी जिह्वा पर वशीकरण कर रखा है, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करते हुए मैं कहता हूं मैं नहीं खाता, इसको श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे ही वैराग्य कौन सा श्रेष्ठ? जहां पर पत्नी, बच्चे, घर, परिवार, लोक लाज सबका त्याग करके ब्रह्मचरित्व का पालन किया जाए, वैराग्य का पालन किया जाए, वो उत्तम वैराग्य नहीं है। पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, और उन सबके मध्य में रहते हुए भी वैराग्य का पालन करना, उसको वैराग्य कहा गया, श्रेष्ठ वैराग्य। नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु ये बताओ आपको वैरागी ज्यादा प्रिय हैं या गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। नारद जी खुद वैरागी है ना, और जब इच्छा हुई थी ब्याह की तो भगवान ने बंदर का मुंह लगा दिया था। तो भगवान से पूछने गए, बोले प्रभु ये बताओ आपको कौन ज्यादा प्रिय, वैरागी ज्यादा प्रिय है या गृहस्थी प्रिय है। भगवान कहते हैं देखो सच बता दें, बोले हाँ बिल्कुल सच बता, बोले हमको गृहस्थी बहुत प्रिय है। नारद जी महाराज अपना तमूड़ा उतार के वहीं बैठ गए, बोले प्रभु यही तो बात है आपकी, यहाँ हम घर छोड़ के बैठे हैं, परिवार छोड़ के बैठे हैं, पत्नी बच्चों को जीवन में लाए नहीं, सबका परित्याग कर दिया, आपकी शरण में आए हैं, दिन रात आपका नाम गाते हैं, करताल लेकर के घूमते हैं, पूरे विश्व में नंगे पांव विचरण करते हैं, हम वैरागी आपको प्रिय नहीं। और वो गृहस्थी साल में एक बार आपका दर्शन करने आता है, उसमें भी मांगने की लिस्ट रख के जाता है, वो गृहस्थी आपको अत्यंत प्रिय। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो कथा, आप लोग जरा भी इधर उधर देखते हो मैं कथा भूल जाता हूं, बालक ही है अभी, तो प्रेम से सुनो सब लोग। भगवान बोले गृहस्थी प्रिय। नारद जी महाराज बोले क्यों प्रिय है गृहस्थी, आज मुझको बताना ही पड़ेगा आप। तब भगवान उत्तर दे रहे हैं, बोले देखो नारद, अब तुमको हम बताएंगे तो तुम समझोगे नहीं, तुम एक काम करो एक क्रिया करके आओ, तुमको अपने आप पता चल जाएगा। नारद जी बोले क्या करना है। नारद जी के हाथ में एक प्याला दे दिया, प्याले में भगवान ने लबालब सरसों का तेल भर दिया और बोल दिया, बोले नारद जी अब इस प्याले को लेकर के जाओ, पूरे वैकुंठ में भ्रमण करके आओ और पूरे वैकुंठ की परिक्रमा लगा करके फिर हमारे पास आना, तब बताएंगे हमको गृहस्थी प्रिय क्यों है। नारद जी बोले इसमें क्या, अभी जाता हूं। जैसे ही प्याला लेकर के जाने लगे, भगवान बोले सुनो सुनो रुको, उंगली में से सुदर्शन चक्र आ गया पीछे, बोले सुनो तुम्हारे प्याले में से एक बूंद भी यदि नीचे गिरा, ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा सर धर से अलग कर देगा। नारद जी बोले ये मत करो, बोले जल्दी जाओ देखो गिर रहा है। अब तो नारद जी महाराज महीनों तक वैकुंठ में घूमते रहे, महीनों बाद जैसे ही भगवान के भवन में आए, भवन में आए हाथ सूज गए, नेत्रों से आंसू बह रहा है, महीनों हो गए एक बूंद भी गिरने नहीं दे रहे, पीछे सुदर्शन चक्र बिल्कुल छिप करके चल रहा है, जरा भी एक बूंद गिरी नारद जी का सर धर से अलग। जैसे ही भगवान के चरणों में पहुंचे, प्याला नीचे रखा, साष्टांग हो गए, प्रभु बहुत बुरी हालत हो गई मेरी, अब तो बता दो मैंने गलत प्रश्न कर लिया आपसे, क्या उत्तर है मुझे बताइए। सुदर्शन चक्र भगवान के पुनः भुजाओं में आ गया। भगवान कहते हैं नारद जी ये जो तुम अभी जीवन जी करके आए हो ना, ये एक सदगृहस्थ व्यक्ति का जीवन है। उसके हाथ में जो ये प्याला है, उस प्याले में भरा हुआ जो तेल है, यही उसका कुटुंब है, उसका परिवार है, पत्नी बच्चे चाचा ताऊ पिता माता, ये सारा परिवार उसके हाथ में है। वो एक को भी गिरने नहीं दे सकता नीचे, सबको संभाल करके रखना है, यदि एक भी गिरेगा तो संसार के व्यंग रूपी सुदर्शन चक्र उसको काटने का प्रयास करते हैं, सदैव अपने हाथ में रखता है कहीं कोई गिर ना जाए, सब संभल के रहें, सबका विकास हो, सब अच्छे से रहें, पत्नी भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, माता भी खुश रहे, पिता भी खुश रहे, इन सबकी खुशी देखने के चक्कर में खुद दुखी रहता है, और इतनी विषम परिस्थिति में भी साल भर में एक बार के लिए वो मेरे लिए समय निकाल लेता है, इसलिए मुझको गृहस्थी बहुत प्रिय है। वो इतने जंजालों में रहते हुए भी मेरा स्मरण कर लेता है, इसलिए मुझको गृहस्थी बहुत प्रिय है। तुम वैरागियों का क्या, तुमने तो बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, सबको छोड़ करके मेरे पास आए हो, लेकिन ये तो सबके साथ रहते हुए मेरा स्मरण करते हैं, इसलिए मुझको अत्यंत प्रिय है गृहस्थी, भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन वैराग्य सदगृहस्थ होते हुए भी आ सकता है। आप लोग कथा में बैठे हो, निश्चित रूप से मैं आपको दावे से कह सकता हूं, इस कथा के बाद में, इस कथा से पहले जिस वस्तु का स्मरण निरंतर रहता है यहां बैठ करके, वो स्मरण आपको नहीं होगा। यहां बैठ के आप ये भी भूल जाओगे मेरे बच्चे कितने हैं, यहां बैठ के आप ये भी भूल जाओगे कितनी बीघा जमीन है मेरी नौ झील में, यहां बैठ करके केवल कथा में मन लगता है, यही उत्तम वैराग्य है। सब कुछ आपके पास है लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए आप सबका परित्याग करके भगवत स्मरण कर रहे हो, इसी को श्रेष्ठ वैराग्य कहा गया। यही भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनका जीवन में होना अति अनिवार्य। नारद जी महाराज ने अनंत प्रयास किए लेकिन ज्ञान और वैराग्य युवान नहीं हुए। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी आप एक काम करो, कलयुग को नष्ट कर दो, कलयुग खत्म हो जाएगा तो मेरे बालक पुनः युवान हो जाएंगे। नारद जी बोले, देवी कैसी बात कर रही हो, कलयुग को मार दूं मैं? बोले क्यों, कलयुग में सारे दुर्गुण ही तो हैं, कलयुग में सारे अवगुण ही तो हैं। नारद जी कहते हैं, नहीं, सारे युगों में सतयुग त्रेता द्वापर, इन तीन युगों में सदगुण ही सदगुण है, एकाध कोई दुर्गुण होता है, लेकिन कलयुग में अनंत दुर्गुण है लेकिन एक बहुत बड़ा सदगुण है। और आपको एक बात बताएं, शास्त्र आज्ञा करते हैं, एको गुण खलु निहंती समस्त दोषान, मनुष्य का एक सदगुण उसके सारे अवगुणों का नाश कर देता है। उसके अंदर एक अच्छा गुण हो ना तो फिर उसके अवगुणों का विचार नहीं किया जाता, उसके सद्गुण को ही देखा जाता है। कलयुग में भले ही अवगुण बहुत सारे हैं लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। बोले क्या? बोले यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग साधना करने से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में जन्म लेने वाला मनुष्य केवल एक नाम हरि नाम संकीर्तन गाने से प्राप्त कर सकता है। केवल एक बार अपने मुख से भगवत नाम उच्चारण कर ले, उसका जीवन उसी से पवित्र हो जाता है। ये कलयुग का सद्गुण है। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया, भक्ति तुम चिंता मत करो, अरे तुम तो भगवान की अत्यंत प्रियसी हो, अत्यंत प्यारी हो, भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।